तो उन्होंने बताया कि ये जो दीर्घदृष्टि विचार है उसको हम व्यवहारिक रूप से कैसे लगा सकते हैं अपने जीवन में। तो एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक बता रहे हैं कि अगर कोई इस श्लोक को पालन कर रहा है तो कहने का मतलब वो दीर्घदृष्टि विचार को थोड़ा सा समझा है। अगर वो इस श्लोक को पालन नहीं कर रहा है तो अभी समझा नहीं है वो अच्छी तरह से। क्या है चैतन्य चरितामृत का अंत लीला का श्लोक है, ना गणी आपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार हरिण महासुख से दुख मोर सुखवर्य। क्या बता रहे हैं, ना गणी आपन दुख, बहुत आसान बंगाली है, ना गणी आपन दुख क्या अर्थ हुआ, अपने दुख को नहीं गिन रहा हूं। सवे वांछी तार सुख, पूरी तरह से जो श्री कृष्ण है उनके सुख की इच्छा है, वांछा मतलब इच्छा। तार सुख अमार तात्पर्य, श्री कृष्ण है गुरु है उनका सुख ही मेरे जीवन का पूरा तात्पर्य। मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख, अगर भगवान को मुझे दुख देने में बहुत सुखी प्राप्त हो रहा है कि मुझे देकर भगवान को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, से ही दुख मोर सुखवर है, तो ये दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। समझ में आए, तो सरस्वती ठाकुर उसका जो व्यवहारिक बताते थे कि भक्त अगर अपनी भक्ति में लगा हुआ है, प्रचार में लगा हुआ है, तो अपने सुख और दुख की परवाह नहीं करता है ना। ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन सीइंग दैट कृष्णा इज हैप्पी, और इसके लिए किसी भी तरह का रिस्क है, किसी भी तरह का जोखिम है, वो लेने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो जैसे हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन को रिस्क लगाए, है ना, जोखिम, जहाज में जाना इतनी उम्र में और फिर हार्ट अटैक आना, तभी तो भगवान स्वप्न में आते हैं ना कि अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी जो नाव है सिप है उसको खेल रहा हूँ, है ना। और प्रभुपाद फिर लिखते हैं कि अभी प्रशांत महासागर बहुत शांत हो गया है, है ना। तो जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रचार के लिए रिस्क नहीं ले रहा है, तो वास्तव में वो दीर्घदृष्टि विचार को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि रिस्क लेंगे तो क्या होगा, रिस्क ले रहे हैं मतलब भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हैं, और भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हैं तभी तो भगवान के सामने अगर हम जाएंगे तो भगवान हमको देखना पसंद करेंगे, करेक्ट। तो जो भगवान की सेवा के लिए अपना व्यक्तिगत रूप से सुख और दुख नहीं देखता है और भगवान के सेवा प्रचार के लिए पूरे अपने आप को लगा देता है, झोंक देता है, वो वास्तव में दीर्घदृष्टि विचार को पालन करता है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अगर इस चीज को हम समझें, एक बार श्रील सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के बीच में एक व्यक्ति उठा और वो जाने लगा, तो बोले कहाँ जा रहे हो, बोले अभी टेलीग्राम आया है कि मेरे पुत्र की जो तबीयत है वो बहुत खराब है, वो मर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, बैठो सुनो हरी कथा सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मरने दो उसको। तो सब लोग सोचने लगे ये क्या है, कैसे कैसे गुरु हैं, इनमें कोई कोई भावनाएं नहीं है, है ना, कुछ कोई भी इमोशंस नहीं है, इतने कठोर हैं। तो वो व्यक्ति तब भी चला गया। तो श्रील सरस्वती ठाकुर बाद में बताए कि जो उसका पुत्र है वो मरने वाला है, वो तो उसको बचा नहीं पाएगा, और बचा भी लिया तो वो इस भौतिक बंधन से तो बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर आज वो हरी कथा सुन लेता तो ये भौतिक बंधन से निकल जाता। तो इसने हरी कथा नहीं सुनी, इसके भौतिक बंधन से निकलने का जो अवसर था वो भी चला गया, और अपने पुत्र को तो वैसे भी नहीं बचा पाएगा, है ना। तो और ऐसे एक उदाहरण है, एक बार श्रील सरस्वती ठाकुर सुबह का समय था और एक उनके शिष्य हैं उनको चिकन पॉक्स था, मैंने बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, और उस समय सब चारपाई पे ऐसे सोते थे, जमीन पर भी चारपाई पर भी। तो इसलिए सरस ठाकुर ने मंगला आरती चालू हुआ 4:30 बजे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ उसको लेके आ जाओ। बोले वो तो प्रभुपाद वो तो बहुत बीमार है, वो तो उठ भी नहीं सकता। बोले कोई नहीं, उसका चारपाई उठा के सामने रख दो, मंदिर हॉल में पीछे रख दो। बोले अरे ये तो इतना बीमार है, उसको अभी क्यों, मतलब ऊपर से लगे कितने कठोर हैं। बोले नहीं उसको लेके आओ। अब सब चारपाई उठा के लेके आए और टेंपल हॉल में सबसे पीछे रख दिया। वो मंगला आरती चल रही, वो लेटा शिष्य सुन के लेटे हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने बताया कि एक्चुअली जब भगवान देखेंगे कि इतना बीमार है, इस अवस्था में भी वो सुबह उठ के आया है, तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे। और भगवान जब इससे प्रसन्न होंगे तब उसका प्रगति होगा। तो उसकी प्रगति हो, भगवान प्रसन्न हो, इसीलिए मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ कि उसको उसकी चारपाई लेके आना। तो अभी ऊपर से क्या लगेगा कि ये क्या है, बहुत निर्दयी है ना, भावनाएं नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनका जो हृदय है सबसे ज्यादा कोमल है ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के जो चरण है उनके आश्रम को ग्रहण करके रखा, तो वास्तव में उस चीज को समझ सकते हैं। फिर वो बताते थे कि जो इस दृग दृश्य विचार को जितना समझा है और जितना पालन कर रहा है, वो भक्ति में उतना ही ज्यादा प्रगत होगा। और ये दृग दृश्य विचार है जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उसको जितने भी अप्रमाणिक संप्रदाय है उससे अलग करता है, और इवन गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी जो अपसंप्रदाय है उनसे अलग करता है, और जो प्रमाणिक गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है उसमें भी जो भक्ति को अच्छी तरह से समझे हैं और जो कनिष्ठ हैं उनमें अंतर को पैदा करता है। मतलब दृग दृश्य विचार कैसा है, जैसे होता है ना लिटमस टेस्ट होता है ना, हम पीएच देखते हैं, पीएच कितनी है, ज्यादा है कम है। तो जो इस दृग दृश्य विचार को जितना ज्यादा समझा है वो भक्ति में उतना ज्यादा वो प्रगत है, उतना ज्यादा भगवान को प्रसन्न कर पा रहा है। फिर वो एक बहुत कई बार वाक्य बोलते थे, अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर, कि आध्यात्मिक वस्तुओं को हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। जिसका उदाहरण देते थे कि जो रावण है सीता का हरण करने आए, लेकिन वास्तव में वो सीता को नहीं ले जा पाए, माया सीता को ले गया, है ना। तो अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृतिक गोचर, तो आध्यात्मिक वस्तुओं को अगर हम भौतिक इंद्रियों से जानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। जिसके लिए वो उदाहरण देते थे जैसे भगवान का धाम है, ये भगवान के विग्रह है, तो ये भगवान के केवल फोटो है, ये भगवान के छोटे विग्रह हैं, ये भगवान के बहुत बड़े विग्रह हैं। बहुत बड़े विग्रह हैं तो बहुत सारी कृपा आएगी। ये भगवान का धाम है, भगवान का धाम कितना है, एक्चुअली 84 कोस है, लेकिन भगवान का धाम क्या है, अनंत है। तो इस इंद्रियों के द्वारा भगवान के विग्रह का साइज इतना है, छोटे हैं या बड़े हैं, भगवान का धाम इतना है, तो इन इंद्रियों के द्वारा हम आध्यात्मिक विषयों को नापने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बोलते थे माया मतलब मियते अन्य इति माया, अगर हम वस्तुओं को आध्यात्मिक वस्तुओं को नापने का प्रयास करते हैं वो माया है। तो गैलीलियो ने एक बोला था, मेजर व्हाट इज मेजरेबल एंड मेक मेजरेबल व्हाट इज नॉट सो, है ना, सबको मेजर करो जो मेजर हो सकते हैं, और जो मेजर नहीं हो सकते हैं उनको मेजरेबल बनाओ, उनको नापो, है ना। तो जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो मेजर नहीं हो सकती। अभी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन कितना भक्ति में प्रगत है, साल से मेजर कर सकते हैं, साल से नहीं कर सकते, या किसकी कब दीक्षा हुई उससे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये एक पैमाने हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन ये अपने आप में एसेंस नहीं है, है ना। हम क्या है, बाहरी एक्टिविटीज, जैसे एक उदाहरण है जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे बोलते हैं कि आपके मंदिर के जो सबसे बड़े हैं उनसे हम मिलेंगे, जो ये झाड़ू लगाने वाले भक्त हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे, जो हेड पुजारी हैं या मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम मिलेंगे। तो जो बाहर, जैसे बाहर की जो चेतना होती है, किसी कंपनी में देखो हम तो भाई चपरासी विपरासी से डील नहीं करते, मालिक है उससे बात करेंगे। तो ऐसे मंदिर में आए ये झाड़ू लगाने वाले, ये तो जो हेड है वो उन्हीं से बात। तो वो क्या है, अपनी भौतिक चेतना के द्वारा जो एक इंस्टीट्यूट में पोस्ट है उसके आधार पर भक्तों को नापने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। फिर बता रहे हैं वो गुरु के नजदीक, गुरु के नजदीक में, तो वो बताएं कि गुरु के आसपास बहुत सारे वो भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं ना, बक्स, बक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, खटमल, जो गुरु को काटते रहते हैं, है ना। तो वो भी बहुत नजदीक हैं, वो भी बहुत नजदीक का संग कर रहे हैं, है ना। तो बता रहे हैं, वी आर लाइक बक्स एंड मॉस्किटोज ऑन ए साधु दैट कैन नाइदर सी नॉर टच द स्पिरिचुअल सब्सटेंस ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, है ना। तो गुरु को भी ऐसा नहीं जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में है, बहुत नजदीक में है, तो गुरु का बहुत अंतरंग है, और जो गुरु से जो बहुत दूर है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, वो अंतरंग नहीं, ऐसा नहीं, जरूर नहीं। जो सेवा कर रहा है, जो आज्ञा पालन कर रहा है, वो गुरु के उतना नजदीक है। जैसे परम पूज भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो वो श्रील प्रभुपाद से तो दो या तीन या चार बार मिले भी नहीं कि वो दर्शन हुए, प्रवचन सुना है, लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद के जो आदेश है उसको यथारूप पालन कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। तो केवल गुरु के नजदीक होना, शारीरिक रूप से नजदीक है तो हम गुरु के नजदीक हैं, वो जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि गुरु के नजदीक होंगे प्रगति होगी, यस वो भी जरूरी है, लेकिन गुरु किसमें प्रसन्न होंगे। जो दृग्दृश्य विचार क्या है, इसमें सोचना कि भगवान कैसे प्रसन्न, गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, ये भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। अभी हम सोचते कि मैं भक्ति में क्या करना चाहता हूँ, मैं भक्ति में ये करना चाहता हूँ, मैं भक्ति में ऐसा करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, भक्त क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, वो वास्तव में क्या है, वो दृग्दृश्य विचार, हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और बता रहे हैं आई सी द स्टैच्यू, गांधी जी की मूर्ति देखी और राधा श्याम सुंदर को भी देखा। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज इन द स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट, तो ये भावना किसमें है, भोग। वेयर द डीटी सीज मी माई अनकवर्ड प्योर सोल इज डीटी दर्शन, तो विग्रहों का दर्शन कैसा है कि विग्रह ने मुझे देखा, माई अनकवर्ड प्योर सेल्फ, आत्मा है उसको देखा और आत्मा के ऊपर कितनी गंदगी है उसको देखा, वो वास्तव में क्या है, विग्रहों का दर्शन है। इफ इन द सेम वे दैट आई सी ए मूवी ड्रामा जिम्नास्टिक डिस्प्ले हियर ए सॉन्ग आई थिंक आई कैन सी द डीटी विथ माई आईज एंड अंडरस्टैंड हिम बाई माई इंटेलिजेंस, जैसे एक मूवी देख के आए, एक ड्रामा देख के आए, एक स्पोर्ट देख के आए, एक गाना सुन के आए, वैसे ही कीर्तन सुन के आए, भगवान के दर्शन करके आए, वैसे हो गए। ऐसे धाम में जाते हैं, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सुंदर बिल्डिंग, ये क्या है, एक्चुअली जाना अच्छा है, ना जाने से जाना अच्छा है, लेकिन वो क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, गुरु कैसे प्रसन्न हो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो कैसे करते थे, जो गरुण स्तंभ है उसके पीछे से करते, क्यों करते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी हमेशा अपने जो भक्त हैं गरुण को देख रहे हैं, अगर गरुण के पीछे हम हैं तो क्या होगा, हमारी भी दृष्टि भगवान पर पड़ जाएगी। अगर गरुण के पीछे नहीं है, इधर उधर खड़े हैं और देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान तो देखेंगे ही नहीं, कि भगवान तो उसी को देखेंगे जो उनकी सेवा में है। तो शिला सरस्वती ठाकुर भी जो गरुड़ जी हैं उनके पीछे खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, है ना। और ऐसे मैंने कई बार बताया है कि जैसे गौड़ी मठ प्रारंभ हुआ तो वहां पर एक विग्रह थे श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का गिरिधारी, तो वो ऐसे दर्शन कर रहे थे। और जब दर्शन कर रहे थे तो उस समय अपने चश्मे नहीं पहने थे, है ना। तो उनकी शिष्य ने बोला कि गुरु महाराज मैं चश्मा लेके आता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से दर्शन कर सकें। तो उन्होंने क्या बोला, वी शुड नॉट थिंक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अवर विजन। तो हमें भगवान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एक हमारे लिए वो एक हमारे लिए वो दृश्य है। इंस्टेड वी शुड मेडिटेट ऑन हाउ वी कैन एक्वायर सम क्वालिफिकेशन टू बिकम वर्दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज विजन। तो मुझे कैसे योग्यता प्राप्त होगी जिससे मैं उनके देखने के लिए योग्य बन पाऊं। जैसे हमारे लिए आपके सामने कोई आ गया और नहाया नहीं उसने और गटर से निकल के आ गया और सामने खड़ा हो गया हंसते हुए, तो कैसा लगेगा वो कैसा लगेगा? लगेगा अरे भागो यहाँ से, है ना, वो बदबू आएगी ना। ऐसे पूरा हृदय में भोग वासना भरी हुई है, अनर्थ भरे हुए हैं और भगवान के सामने सामने जाके खड़े हो गए और इतनी सारी भोग वासना है तो भगवान को कैसा लगेगा? तो इसलिए वास्तव में दर्शन क्या है, कोई बाइक से दे देगा? हाँ बाइक से। फिर एक भक्त आए और उन्होंने सरस्वती ठाकुर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे इस जीवन में मुझे भगवान के दर्शन हो पाए। कम से कम कई लोग पूछते हैं ना कि आपको कितने साल हुए भक्ति में, इतने साल, तो आपको अभी तक भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? कई लोग ऐसा पूछते हैं। तो क्या मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप भगवान को देखेंगे कि भगवान आपको देखेंगे? आप अपनी संतुष्टि के लिए भगवान को देखना चाहते हैं, ये सही मनोवृत्ति नहीं है। केवल एक रेटिना के ऊपर छोटा सा एक इम्प्रेशन पड़ेगा उससे आप भगवान को नहीं देख सकते हैं। वास्तव में अगर भगवान को देखना है तो जो गुरु हैं उनकी सेवा करनी होगी और वो हमको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, है ना। ऐसे एक जमींदार आया उनके पास और बोला कि आपसे थोड़ा प्राइवेटली बात करनी है मुझे। अकेले में बात करनी है, ठीक है। क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? तो सरस्वती ठाकुर ने बोला है, मैंने दर्शन नहीं किए या नहीं किए उससे आपके जीवन में क्या अंतर आएगा? अगर मैंने बोल दिया दर्शन किए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने दर्शन किए? और मैंने अगर झूठ बोल दिया कि मैंने दर्शन किए हैं तो आप तो विश्वास कर लोगे जबकि मैंने दर्शन नहीं किए। तो मेरे हाँ या ना बोलने से आपके जीवन में क्या अंतर आएगा? तो आपको ये पूछना चाहिए कि मैं कैसे शुद्ध हूं, कैसे पालन करूं जिससे मैं भगवान के दर्शन कर पाऊं, ना कि ये कि आपने दर्शन किए कि नहीं किए। कोई भी ढोंगे गुरु बोल देगा कि हाँ मैंने दर्शन किए तो आप उसको मान लोगे, तो ये प्रश्न ही गलत है। वो बोलते थे, विदाउट लेसरेटिंग ऑल कुदर्शन बाई सुदर्शन नो वन कैन अटेन भगवत दर्शन। कि जितने भी कुदर्शन हैं, जितने भी गलत सिद्धांत हैं, उसको अगर सुदर्शन से नहीं काटेंगे, सुदर्शन मतलब दर्शन मतलब सिद्धांत, सही दर्शन से नहीं काटेंगे तब तक भगवत दर्शन नहीं होगा। तो कुदर्शन को सुदर्शन से काटने पर भगवत दर्शन होगा। ऐसे वो अलग अलग और भी हम आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। और वो भगवान को देखने को क्या बोलते थे, आई एक्सरसाइज, आंखों का व्यायाम। भगवान को देख रहे हैं, ये भी दर्शन किए, ये भी दर्शन किए, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि वो प्रवचन दे रहे थे तो कुछ भक्त वहां से चले गए और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ गए। तो उन्होंने बोला, क्या आपने क्या देखा? लकड़ी देखी, पत्थर देखा, है ना। वो बता रहे हैं आईज ऑफ फ्लैश, है ना। फ्लैश को क्या बोलेंगे हिंदी में? इस मांस की बनी हुई आंखें, द आईज ऑफ फ्लैश कैन नेवर सी द सच्चिदानंद विग्रह। तो मांस की बनी हुई आंखें हैं, इस सच्चिदानंद विग्रह को कभी दर्शन नहीं कर सकती है। तो ये जो अभी जो दृग्दृश्य विचार है, ये केवल भगवान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, भक्तों के परिप्रेक्ष्य में भी है। अगर भक्तों को भी हम केवल एक भौतिक गणना के अनुसार नापने का प्रयास कर रहे हैं तो भी हम वास्तव में भक्तों का संग नहीं कर पा रहे, है ना। ये भक्त तो IIT से पास आउट है और ये भक्त तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो ये महान भक्त हैं क्योंकि IIT से हैं। IIT से इसलिए महान है वो। हम ये नहीं देख रहे हैं कि भक्त वो भक्ति में कितने प्रगत है, हम क्या वो डिग्री देख रहे हैं, है ना। या कोई समृद्ध परिवार से आया और कोई भौतिक रूप से गरीब परिवार से आया, तो देखो ये तो कितना सारा छोड़ के आया, ये तो क्या है, इसको तो कोई काम था नहीं इसलिए मंदिर आ गया, है ना। तो हम क्या है, कास्ट से, रंग से, देश से, एजुकेशन से भक्तों की गणना कर रहे हैं, है ना। तो ये तो केवल हमारे आसपास के जो भक्त हैं उनके दृष्टिकोण में है, लेकिन जो महान आचार्य हैं उनको भी हम भौतिक गणना से देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक प्रोफेसर थे, बहुत प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, और वो प्रवचन में बैठे हुए थे, शिला सरस्वती ठाकुर के प्रवचन में। उन्होंने बाद में बोला, देखो श्री सरस्वती ठाकुर, आपके जो पिताजी है ना, उनके सामने मैं गीता का उच्चारण किया करता था, उनसे मैं मिला करता था, और उनसे मैंने बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें भी किया है ना। तो सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे और एकदम से क्रोध में, दिव्य क्रोध में आए। उन्होंने बोला कि आपने कभी भक्ति विनोद ठाकुर का दर्शन किया ही नहीं, आप कभी भक्ति विनोद ठाकुर से मिले ही नहीं है। तो वो एकदम से चौंक गया, बोले इतने समय में उनसे मिलता था, उनसे बातचीत करता था, तुम भी वहीं बैठे रहते थे और तुम बोले कि नहीं हो, कैसे अपने शिष्यों को सिखा रहे, है ना। तो बोले नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर से तुमने कभी देखा ही नहीं है, और कोई भी प्रोफेसर भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं देख सकता है। और बोले भक्त, वो बोले कि तुम तो उनके पुत्र हो, बोले भक्ति विनोद ठाकुर का कोई पुत्र नहीं था। तो प्रोफेसर चौंक गए, हो क्या रहा है, बोले भक्ति विनोद ठाकुर इस भौतिक जगत के है ही नहीं, वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, और जो ऐसा सोच रहा है कि भौतिक जगत के कोई व्यक्ति हैं, इनके ये पुत्र हैं, ये मजिस्ट्रेट हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर को देख ही नहीं पा रहा। भक्ति विनोद ठाकुर कौन देखेंगे, जो उनकी शिक्षाओं को पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वो भक्ति विनोद ठाकुर को देखेंगे। तो वो स्कॉलर वहां से चला गया और बहुत गुस्से था, बोले कि कैसे मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया कि मैंने देखा ही नहीं, उनसे मिला ही नहीं, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जब भी मैं आता था मुझे बैठाते थे, प्रसाद देते थे, और आज तो उनके जो पुत्र हैं उन्होंने मुझे ऐसे ही निकाल दिया। तो समझ नहीं पाए, है ना। तो बाद में बोलते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव सच मंडेन विजन यू कैन नॉट सी श्री भक्ति विनोद ठाकुर। जब तक आपकी भौतिक दृष्टि है तब तक आप भक्ति विनोद ठाकुर को नहीं देख सकते हैं। बिकम फिक्स्ड इन सीइंग योरसेल्फ एज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज साइट। आप अपने आप को दृष्टा समझ रहे हो और भक्ति विनोद ठाकुर को दृश्य समझ रहे हो, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर दृष्टा है, आप दृश्य हो। तो जब आप जानोगे कि भक्ति विनोद ठाकुर मुझसे क्या चाहते हैं, तब वास्तव में आपको आपके भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन हुए, है ना। लास्ट और लेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो एक बार गौड़ी मठ में एक बहुत बड़ा त्योहार मन रहा था, फेस्टिवल था, उत्सव था, और उसमें बहुत सारे मालपुआ बनाए थे, है ना। तो वहाँ पर एक बहुत प्रतिष्ठित एक व्यक्ति आए थे, शास्त्री जी थे, और वो मालपुआ खा रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर के एक शिष्य हैं अनंत वासुदेव प्रभु, उन्होंने बोला कि शास्त्री जी आप ध्यान दीजिए कि आप मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ आपको खा रहा है कि आप मालपुआ को खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है। पंडित हना केने ना करे विचार, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं पंडित, इस पे विचार कीजिए, है ना। तो वो बहुत नाराज हो गए, वो चले गए और उन्होंने पत्र लिखा, बोले मैं आपके उत्सवों में आता हूँ और जब मैं प्रसाद ले रहा था तो मुझे बहुत ही हृदय से बहुत विचलित हुआ, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी गवर्नमेंट नौकरी थी, मुझे पेंशन ही मिलता है मेरे दो बच्चे हैं जो अच्छा कमाते भी हैं और मेरी जो पत्नी है बहुत अच्छा भोजन बनाती है, मैं बहुत मालपुआ खाता हूँ, लेकिन आपके शिष्य ने मुझे बोला कि मालपुआ को खा रहे हैं आप, ये मालपुआ आपको खा रहे हैं, है ना। तो बहुत मैं लालची नहीं हूँ कि मालपुआ खाने आया था तो इसलिए सरस्वती ठाकुर ने बोले कि संसार में इवन गौड़ीय मठ में कोई एक या दो व्यक्ति होंगे जो अनंत वासुदेव प्रभु की ये बात को समझ पाए होंगे, नहीं तो कोई नहीं समझ पाया होगा इस संसार में। कि इवन गौड़ीय मठ में भी इसको कोई नहीं समझ पाए होंगे, है ना। तो बता रहे हैं उन्होंने, शास्त्री जी उनको पत्र लिखा तो उन्होंने बताया कि जब हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद से पहले वंदना होती है, हम शरीर अविद्या जाल, उससे पहले भी होता है साधु सावधान, साधु सावधान। साधु सावधान क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम प्रसाद ले रहे हैं वो कृपा है, कृपा झपटी नहीं जाती है, है ना। कृपा ऐसे नहीं कृपा मिल ली और झपट गए उसमें कृपा क्या होती है, कृपा सामने वाले व्यक्ति की कृपा से मिलती है। भगवान कोई मशीन नहीं है कि हमने भोग लेके आए, भगवान के सामने रखा, घंटी बजाई, प्रसाद बन गया, प्रसाद आ गया और खा रहे हैं। अगर उस चेतना में नहीं है, उस चेतना में नहीं खा रहे हैं, तो भगवान अपनी कृपा को वापस भी ले सकते हैं। भगवान कोई मशीन नहीं है, कृपा चली गई बस हो गया। अगर हम उस चेतना में प्रसाद को ले रहे हैं तो क्या होगा, तो कृपा चली जाएगी, उतना शुद्धिकरण नहीं होगा। नो डाउट भगवान ने स्वीकार किया है तो शुद्धिकरण होगा, लेकिन उतना स्तर का शुद्धिकरण नहीं होगा। तो बता रहे हैं कि हम प्रसाद को मेजर करना चाह रहे हैं, मैं दृष्टा हूं, प्रसाद क्या है, दृश्य है, मैं भोगता हूं और प्रसाद क्या है, भोग की सामग्री है। लेकिन इफ द प्रसाद एंजॉयज अस, अगर जो प्रसाद है हमें हमारा भोग करेगा, eats us and makes us its own, then we will conquer over matter and that will be the to our benefit. प्रसाद आएगा, हमको खाएगा, हमारे अनर्थ खाएगा, और तब जो प्रसाद की प्रकृति है हमारी प्रकृति एक जैसी हो जाएगी, है ना। द मीनिंग ऑफ प्रसाद इज फेवर और मर्सी, कृपा, फेवर करना, है ना। तो हमें वन शुड कंसीडर वन सेल्फ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ विजन और एंजॉयमेंट फॉर द प्रसादम ऑफ द लॉर्ड और इज डिवोटी, है ना। तो भक्तों के या भगवान के जो प्रसाद है उसका हमको दृश्य बनना है, ना कि दृष्टा बनना, है ना। तो आज हम इसको समाप्त करेंगे और एक्चुअली यही शिक्षा जो है दृश्य विचार, उसी के आधार पर पूरा जीवन है, उनकी पूरी शिक्षाएं हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देने आए, प्रहलाद महाराज को दर्शन देने आए, फिर भी मायावादी भगवान के रूप को स्वीकार क्यों नहीं करते, है ना। तो भगवान के रूप को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, वो निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वो अल्टीमेटली जो परम सत्य है वो निराकार है, और जो जो भक्त है अभी, जो निम्न अवस्था में है, जो प्रार्थना करता है, तो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो जो निराकार ब्रह्म है वो अपना रूप लेके आता है ना। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान के अलग अलग रूप क्या होते हैं, उसको पूरी तरह से वो नकार देते हैं। रूप को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अंततः वो रूप कहाँ से आया है, निराकार से आया। तो वो द्वेष है उनका, क्योंकि वो शरणागत नहीं लेना होना चाहते। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके उपदेश होंगे, उपदेश होंगे तो पालन करना होगा। अगर हम बोल देंगे कि हमको निराकार में जाके लीन होना है, तो किसकी शरणागति लेना, किसी की नहीं लेना। हम अपनी साधना करेंगे, प्रगत होंगे और धीरे धीरे लीन हो जाएंगे। तो जो भोग करने की इच्छा है, इसलिए मायावादी क्या होते, सबसे बड़े भोगी होते, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। जो भौतिकतावादी हैं वो भगवान को इमिटेट करते हैं कि भगवान जैसे मुझे भोग करना है, लेकिन मायावादी स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, वो सबसे बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो भगवान से द्वेष की वजह से, भोग प्रवृत्ति होने की वजह से भगवान के जो व्यक्तिगत रूप है उसको परम नहीं मानते, क्योंकि उससे शरणागति लेना पड़ेगा, वो उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मित अहंकार है। ये वैष्णविज्म और मायावाद में अंतर, शरणागति सेल्टर। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।